بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, अक्टूबर की 20, रबीउल अव्वल की 23 और मेहर माह की 28 तारीख। कार्यक्रमों में विगत की ही भांति पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के बाद हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे आज की बात, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बताते चलें कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट के लिए पता है partstoday.com/hi। और अब कुछ ही क्षणों में क्षमा कीजिएगा और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन के विरुद्ध हथियार भेजना हमारी नीति नहीं। यूक्रेन को लेकर भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तालिबान ने आतंकी गुटों को 3,000 पासपोर्ट दिए हैं। और फिलिस्तीनियों के लिए ये साल सबसे अधिक रक्त रंजित रहा। अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन के विरुद्ध हथियार भेजना हमारी नीति नहीं है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस दावे को निराधार बताया है कि यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में रूस के लिए ईरानी मिसाइल भेजे जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रभारी के साथ टेलीफोनी संपर्क की बात को उल्लेख करते हुए लिखा कि हमने इस संपर्क में उनको बताया कि हमारी स्पष्ट नीति यूक्रेन में युद्ध में वृद्धि का विरोध है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के विरुद्ध ईरानी मिसाइल भेजने का दावा पूरी तरह से निराधार है। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि रूस के साथ हमारा सैन्य सहयोग है, किंतु यूक्रेन के विरुद्ध हथियार भेजना हमारी नीति नहीं है। यूक्रेन को लेकर भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बदलते हालात के बीच भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमलों के बीच भारत ने एक एडवाइजरी जारी करके यूक्रेन की बिगड़ती स्थिति का हवाला दिया। नई दिल्ली ने अपने सभी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा से बचने और वहाँ पहले से मौजूद नागरिकों को जल्द से जल्द इस देश को छोड़ देने की सलाह दी है। यूक्रेन की राजधानी स्थित भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी एक बयान में कहा है कि यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल ही में बढ़ी लड़ाई को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, जबकि वर्तमान में यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को यहां उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह भी दी जाती है। तालिबान ने आतंकी गुटों को 3,000 पासपोर्ट दिए हैं। ताजिकिस्तान के गृह मंत्री ने बताया है कि तालिबान ने आतंकी गुटों को अब तक 3,000 पासपोर्ट जारी किए हैं। फार्स न्यूज के अनुसार ताजिकिस्तान के गृह मंत्री रमजान रहीम जादे ने एक बैठक में ये बात कही है। उन्होंने दोशंबे नगर में आतंकवाद से संघर्ष के बारे में आयोजित एक बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान द्वारा 3,000 आतंकियों को अफगानिस्तान का पासपोर्ट दिया जाना एक खतरनाक काम है। उन्होंने कहा कि इससे तालिबान के खतरे का पता चलता है। ताजिकिस्तान के गृह मंत्री का कहना था कि अफगानिस्तान की स्थिति पर सबको नजर रखते हुए उसके समाधान में आगे आना चाहिए। रमजान रहीम जादे के बयान से पहले ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने भी इसी बैठक में अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों की उपस्थिति का उल्लेख किया था। उन्होंने इस संदर्भ में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सचेत भी किया था। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के हिसाब से अफगानिस्तान में हजारों आतंकवादी आत्मघाती कार्रवाइयों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने दूतावास को बैतुल मुकद्दस न ले जाने के फैसले का जॉर्डन ने स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि देश की सरकार ने पिछली सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया है कि बैतुल मुकद्दस ज़ायोनी शासन की राजधानी है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने बैतुल मुकद्दस में अपना दूतावास स्थानांतरित करने का फैसला टाल दिया है। इस संबंध में जॉर्डन की संसद ने एक बयान जारी करके ये घोषणा की है कि ये काम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के प्रति उसके सम्मान का भी सूचक है। जॉर्डन की संसद से जारी बयान में यह कहा गया है कि तेल अवीव से विदेशी दूतावासों को बैतुल मुकद्दस स्थानांतरित करने से अवैध ज़ायोनी शासन को वैधता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो फिलिस्तीन की स्वतंत्र सरकार की राजधानी है। जॉर्डन की संसद के अनुसार फिलिस्तीन के बारे में इस देश का दृष्टिकोण अडिग है कि जो फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र देश के गठन पर बल देता है। फिलिस्तीनियों के लिए ये साल सबसे अधिक रक्त रंजित साल रहा है। पिछले 16 वर्षों के दौरान सन 2022 फिलिस्तीनी क्षेत्र में सबसे रक्त रंजित और खूनी वर्ष रहा। अतिग्रहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय समन्वयक ने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि पिछले 16 वर्षों में ये साल फिलिस्तीनियों के लिए सबसे रक्त रंजित साल है। अतिग्रहित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय मामलों के समन्वयक ने वेस्ट बैंक में कर्फ्यू लगाने सहित पूर्वी बैतुल मुकद्दस में हिंसक गतिविधियों में वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के औसत में 57% की वृद्धि हुई है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक सदस्य ने कहा है कि प्रतिरोध का मोर्चा अजेय है। सीरिया का दौरा करने वाले हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य खलील हैया ने कहा है कि प्रतिरोध का मोर्चा अजेय है और सीरिया की धरती पर प्रतिरोध की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि खलील अलहिया ने अन्य फिलिस्तीनी गुटों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ राष्ट्रपति बशार असद से मुलाकात की। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। ब्रेवरमैन को 43 दिन पहले गृह मंत्री नियुक्त किया गया था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यभार संभाला था। इससे पहले ब्रेवरमैन की बुधवार को प्रधानमंत्री ट्रस के साथ बैठक हुई और इसे सरकार की नीति पर असहमति का परिणाम नहीं माना गया। पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया था और उनके उत्तराधिकारी वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सोमवार को सरकार के मिनी बजट में कटौती की थी। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले अभी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। फार्स की खाड़ी के देश सेवानिवृत्त अमरीकी जनरलों के लिए सबसे अधिक लाभदायक जगह बन गए हैं। एक अमरीकी अखबार ने लिखा है कि अमरीका के लगभग 500 वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी पश्चिमी एशिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सन 2015 से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अमरीकी सैन्य कर्मी विदेशी सरकारों खासतौर पर फार्स की खाड़ी के देशों के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को दिल्ली में एयरपोर्ट पर रोका गया जिस पर अमरीका ने प्रतिक्रिया दी है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। वे पुलित्जर पुरस्कार लेने न्यूयॉर्क जा रही थी। उन्होंने कहा कि वैलिड अमरीकी वीज़ा और टिकट होने के बावजूद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको विदेश जाने से रोका गया। इससे पहले भी इस कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट को विदेश जाने से रोका जा चुका है। इसी के साथ विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान के ड्रोन विमानों से संबंधित आरोपों की सच्चाई के बारे में।
ईरान के ड्रोन विमान इस समय पश्चिमी मीडिया में खासतौर पर,
और फिर बात करेंगे फिलिस्तीन में तबाही मचा रहे इसराइल के बारे में,
आतंकवाद क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय मांग,
और अंत में चलेंगे भारत जहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच को लेकर मचे घमासान के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
भारत और पाकिस्तान के कड़वे संबंधों की छाया।
तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मीडिया के उस दावे के बारे में जो ये कह रहा है कि यूक्रेन में ईरानी ड्रोन विमानों ने तबाही मचा रखी है। यूरोपीय देशों का ईरान पर लगाए जाने वाले आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
ईरान के ड्रोन विमान इस समय पश्चिमी मीडिया में खासतौर पर, जबकि विश्व मीडिया में भी काफी हद तक सुर्खियों में छाए हुए हैं। मीडिया में यह हंगामा है कि ईरानी ड्रोन यूक्रेन युद्ध में रूस का बेहद खतरनाक हथियार साबित हो रहे हैं और उनके जरिए अचानक इस युद्ध में रूस को बड़ी मजबूती मिल गई है। क्रीमिया ब्रिज पर होने वाले हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर जो व्यापक हमले किए उनमें पश्चिमी हलकों का दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन विमानों ने भारी तबाही मचा दी। इस हमले में रूस ने कीव और अन्य शहरों में स्ट्रेटेजिक महत्व रखने वाले प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि ईरानी ड्रोन विमानों ने दक्षिण और पश्चिम में स्थित चार प्रांतों में यूक्रेनी सेना की प्रगति को पूरी तरह रोक दिया, जिन्हें रूस अपना हिस्सा बना चुका है। ईरानी ड्रोन विमानों का हंगामा पूरी दुनिया में मच गया। यूरोपीय सरकारें इस विषय पर चर्चा के लिए शिखर बैठक कर रही हैं, वहीं अमेरिका ने सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है और ये साबित करने की कोशिश में है कि ईरान का रूस को ड्रोन विमान देना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन है। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने बार बार इस आरोप का खंडन किया है। ईरान का कहना है कि उसने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने के लिए कोई भी हथियार रूस को नहीं बेचा। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने क्रोएशिया के विदेश मंत्री गर्लिच रादमैन से बातचीत में कहा कि हम जंग के खिलाफ हैं और किसी भी युद्धरत पक्ष को हथियार बेचे जाने का विरोध करते हैं। हमने यूक्रेन के अधिकारियों से भी कहा है अगर इस जंग में ईरानी ड्रोन विमान इस्तेमाल होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दिखाएं। उन्होंने कहा कि बेशक रूस के साथ हमारा वर्षों पुराना रक्षा सहयोग है, मगर यूक्रेन युद्ध का हमने समर्थन नहीं किया और ईरान का कोई भी हथियार यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने के लिए रूस को नहीं दिया गया है। अगर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की बात की जाए तो यह आकार में छोटा है और कीमत में सस्ता। इसे बहुत लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ता है, जिसकी वजह से राडार की रेंज से बाहर रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 40 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता है, जो अपने लक्ष्य से टकरा कर उसे बुरी तरह नष्ट कर देता है। यहाँ इस्लामी इनकलाब के नेता आयतुल्ला नज़मा खामने के बयान पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। उन्होंने प्रतिभावान युवाओं से मुलाकात में कहा कि जो लोग एक ज़माने में ईरानी ड्रोन विमान की तस्वीरें देखकर मजाक उड़ाते थे कि ये तो फोटोशॉप से तैयार की गई तस्वीरें हैं, वही आज कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन बहुत खतरनाक है। ये भी रोचक है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने $60 अरब के भारी हथियार और जंगी उपकरण यूक्रेन को दिए हैं और इस समय वो इस बात पर हंगामा मचा रहे हैं कि ईरान ने अपने घटक रूस को ड्रोन विमान क्यों दे दिया। इस बीच रूस ने भी बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध में वो कोई विदेशी ड्रोन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के दूतावास ने बयान देते हुए कहा कि इन आरोपों को खारिज किया जाता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस ईरानी ड्रोन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। सच्चाई यह है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। पूरी दुनिया पर राज करने वाले पश्चिमी देश लगातार कमजोर होते जा रहे हैं और अब वे किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा पाने की स्थिति में नहीं रह गए। इस कमजोरी को छिपाने के लिए वे तरह तरह के आरोप गढ़ते रहते हैं।
और अब चर्चा करते हैं अवैध ज़ायोनी शासन द्वारा फिलिस्तीनी राष्ट्र पर किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में। एक और दुनिया जहां छोटी छोटी घटना पर हाय तौबा मचा देती है, वहीं इसराइल के जुल्म पर चुप्पी साधे रहती है। इसकी क्या है वजह, इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
आतंकी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय मामलों की समन्वयक लुसिया एलमी ने बताया है कि पिछले 16 वर्षों के दौरान 2022 फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सबसे रक्तरंजित और खूनी वर्ष रहा है। उन्होंने वेस्ट बैंक में कर्फ्यू लगाने सहित पूर्वी बैतुल मुकद्दस में हिंसक गतिविधियों में वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2022 में 26 बच्चों सहित कम से कम 105 फिलिस्तीनी इसराइली सैनिकों के हाथों शहीद हुए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 2022 में फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनियों की हिंसा पिछले 16 वर्षों में उच्चतम स्तर पर क्यों थी। इस संबंध में पहला कारण अरब देशों और अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन के बीच संबंधों के प्रकार से जोड़ा जा सकता है। हालिया वर्षों के दौरान अरब देशों और अतिक्रमणकारी ज़ायोनी शासन के बीच संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर गए हैं। इन देशों ने जिनके पहले ज़ायोनी शासन के साथ गुप्त संबंध थे, हालिया वर्षों में एक ओर खुले संबंध स्थापित किए हैं और दूसरी ओर संबंधों के स्तर को राजनयिक संबंध स्थापित किए और पिछले 2 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में इन संबंधों को विस्तृत किया है। सऊदी अरब जैसे देशों ने आधिकारिक राजनयिक संबंध बहाल नहीं किए, लेकिन उसने भी ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों के स्तर को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब के अंदर इसराइली और सऊदी अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें हुई हैं اور ریاض نے اسرائیل کے ویمانوں کو سعودی آسمان پر اڑان بھرنے کا لائسنس بھی دے دیا ہے۔ عرب دیشوں اور زائنی شاسن کے بیچ سمبندوں میں بدلاؤ کی وجہ سے جہاں ایک طرف ان دیشوں نے اسرائیل کے اپرادھوں پر آنکھیں مود لی ہیں، وہیں دوسری اور تل ابیب فلسطینیوں کے خلاف ہنسا کو آرام سے انجام دے رہا ہے، بلکہ اس نے مظلوم فلسطینیوں کے ورودھ ہنسک کاروائیوں میں تیزی کر دی ہے۔ دوسری وجہ اسرائیلیوں کے ورودھ فلسطینیوں کی پرتیرودھک کاروائیاں ہیں۔ فلسطینی زائنی شاسن کے خلاف عرب دیشوں کے سمرتھن سے نراش ہو چکے ہیں اور وہ اس نشکرش پر پہنچ چکے ہیں کہ پرتیرودھ اور آتم نربھرتا ہی اس شاسن کے اپرادھوں سے نپٹنے کا ایک ماتر طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال اسرائیلیوں کے خلاف پرتیرودھک کاروائیاں ادھگرہت کھیتروں میں بڑھی ہیں اور ان آپریشنوں میں درجنوں زائنی مارے گئے اور گھائل ہوئے ہیں۔ ان آپریشنوں کے سامنے اسہائے نظرات اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف اور ادھک ہنسا کا سہارا لیا ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت اور پاکستان کے کڑوے سمبندوں کی چھایا اب کرکٹ پر بھی گہراتی نظر آ رہی ہے۔ کرکٹ پریمیوں کی بھاوناؤں کو آہت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس کھیل سے انجان مگر بی سی سی آئی کے شاہ، وہیں پی سی بی آئی کے راجا بھی اس بار کھیل میں راجنیتی کا جواب راجنیتی سے دینے کا پریاس کر رہے ہیں۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سمباددتا شمشاد کاظمی۔
بھارت اور پاکستان کے کڑوے سمبندوں کی چھایا کرکٹ پر بھی گہراتی نظر آ رہی ہے۔ دونوں دیشوں کے کرکٹ بورڈ کے ادھیکاریوں کے بیان سے کرکٹ پریمیوں میں اداسی چھا رہی ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سچیو کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ورش ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں جائے گی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی دھمکی دی ہے کہ یدی ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی ایک دیوسیہ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی۔ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین رمیز راجا نے اس مدعے کو لے کر ایشیا کرکٹ کونسل کی آپات بیٹھک بلانے کی مانگ کی ہے۔ ان وکتویوں کے بیچ آج بھارت کے کیندریہ سوچنا ایوم پرسارن اور کھیل منتری انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اگلے ورش پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی پاکستان یاترا ہوگی یا نہیں اس پر گرہ منترالے کوئی فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ او ڈی آئی ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان سہیت سبھی بڑی ٹیمیں بھاگ لیں گی، یہ میچ بھی اگلے سال بھارت میں ہوگا۔
بی سی سی آئی اس پر ٹپنی کرے گا۔ بھارت تو کھیلوں کی ایک ایسی بھومی ہے جہاں ایک نہیں کئی ورلڈ کپ کا آیوجن کیا گیا۔ اگلے سال ورلڈ کپ بھی ہوگا اور دنیا بھر کی ٹیمیں بھی کھیلیں گی، کیونکہ بھارت کو آج کوئی کسی کھیتر میں نکار نہیں سکتا۔
ایک سنواددتا سمیلن میں انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ کوالیفائی کرنے والی سبھی ٹیموں کو بھارت میں میچ کھیلنے کے لیے آمنترت کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کئی بار بھارت آ کر کھیل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے کھیلوں وشیش کر کرکٹ میں بھارت کا بڑا یوگدان رہا ہے اور کسی بھی کھیل میں بھارت کی اپیکشا نہیں کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئی سی سی ٹورنامنٹ میں پاکستان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں لیکن دویپکشی شرنکھلاؤں کو لے کر ہمارے رخ میں بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے ادھیکش جے شاہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے پاکستان نہیں جائے گی۔ انہوں نے اگلے ورش پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ کا آیوجن کسی تیسرے تٹستھ دیش میں کرانے کی بات بھی کہی تھی۔ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ نے جے شاہ کے بیان پر آپتی ویکت کی تھی اور اس بیان کو درباگیہ پورن بتایا تھا۔ اکت بورڈ نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ یا ایشین کرکٹ کاؤنسل سے صلاح مشورے کے بنا یہ بیان دیا گیا ہے جو آشچر جنک ہے۔ پی سی بی نے ایشیا کپ ٹورنامنٹ تٹستھ استھان پر کرانے کے جے شاہ کے بیان کو ایک طرفہ بتایا۔ بھارت اور پاکستان کے سمبندوں میں برابر اتار چڑھاؤ رہا ہے اور اس پرکار کے فیصلے سے کرکٹ پریمیوں میں نراشا پیدا ہو جاتی ہے جو کرکٹ کی دو دگج ٹیموں کے بیچ میچوں کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. دوستو آپ نے دینک کارکرم سنا راجنیتک چرچا, اور اب پیش ہے ساپتاہک کارکرم آج کی بات.
آج کی بات.
شروتاؤں کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے, میں ہوں احمد عباس. کارکرم میں ہم بات کریں گے کانگریس کے نیتا راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے 1000 کلومیٹر پورے ہونے پر بن رہے پرسپشن اور نیریٹو کی. راہل گاندھی کے نیتریتو والی یاترا تمل ناڈو اور کیرل کو کور کر چکی, جس کے بعد کرناٹک کی باری آئی. کرناٹک میں اس یاترا نے اپنے 1000 کلومیٹر پورے کیے. یہ یاترا آندھر پردیش اور تلنگانہ کو بھی کور کر رہی ہے, جبکہ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش بھی جائے گی. اس یاترا نے بھارت میں ایک نئی بحث شروع کر دی ہے, اور بہت سے گلیارے کہنے لگے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے نیتا راہل گاندھی نے اپنی اس یاترا سے راجنیتک, ساماجک, پرچارک اور دوسرے انیک گلیاروں میں بڑی بنیادی قسم کی بحثیں شروع کروا دی ہیں. کرناٹک کی سیما پر استھت آندھر پردیش کے ججارا کلو, مدینا ہلی, لکشمی پورم, ڈی ہیرے ہال اور ابولا پورم نامک گاؤں سے ہو کر راہل نے 12 کلومیٹر کی یاترا کی, تو اس دوران پارٹی کاریکرتا اور گرامیڑ ان کے سواگت کے لیے لائن میں کھڑے دکھائی دیے. پترکار منورما کرناٹک میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوئی. انہوں نے اس یاترا کا حال ایک کارکرم میں بیان کیا. انہوں نے بتایا کہ ستھانیے لوگوں میں بڑا اتساہ اور بڑی امید ہے, خاص طور پر الپ سنکھیکوں میں اس یاترا کو لے کر بڑی جاگروکتا دیکھنے میں آ رہی ہے.
میں نے ٹمکورو میں جوائن کیا تھا یاترا, گبی تعلقہ میں, جو ارن کیرے پالیا سے لے کر کے آگے 15 کلومیٹر اور شام کی یاترا جو 4 سے 7 تک ہوتی ہے. تو میں اس وقت میں ان کے ساتھ جڑی تھی, تو میں وہاں سے جڑی تھی. اور یاترا میں جو ہے جیسا کہ ہے کہ ستھانیہ جتنے بھی کانگریس کے نیتا 100-125 کے قریب میں نیتا ہیں, اور جتنے جو پرمکھ چہرے ہیں, چاہے جے رام رمیش ہوں, چاہے سدھرامیا جی ہوں, ڈی کے شیو کمار ہوں, اور یہ سارے لوگ تو وہاں پر تھے ہی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ستھانیہ لوگوں کی بھاگیداری ہم نے اس طرح سے دیکھی کہ لوگ چھتوں پہ کھڑے تھے, دکان کی چھجوں کے اوپر کھڑے تھے, اور پورے راستے اگر مطلب جو ساتھ میں آ رہے تھے وہ تو تھے ہی, اس کے علاوہ جو آس پاس کے لوگ تھے جو نہیں آ سکتے تھے وہ وہاں پر کھڑے تھے. تو ایک پورا کا پورا جیسے دو چوکی ٹائپ کا تھا, جس پہ کھیرا لگا کر کے اور پانی سے واش کر کے آتے جاتے لوگوں کو پکڑا دے رہے تھے. مجھے بھی پکڑا ہے ایک کھیرا. پھر ایسے ہی ناریل ٹوکری میں لے کے روڈ کے بیچوں بیچ ایک مہیلا کھڑی تھی اور وہ سب کو ناریل دیتی جا رہی تھی. کہیں جو ہے وہ کچھ لوگ کھڑے تھے, اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ عام لوگ تھے, جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھے. مرمرے لے کر کھڑی تھی اور وہ لوگوں کو پیکٹ اس کے تھماتی جا رہی تھی. تو اس طرح سے لوگوں کا تھا. پلس صرف راہل گاندھی ہی نہیں, سدھرامیا کو لے کر کے بھی لوگ جو ہے گاؤں کی جو مہیلائیں تھیں وہ کھڑی تھی, کچھ آرتی کرنے کے لیے کھڑی تھی. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے دیکھی کہ جو مائنورٹی ہے ان کے اندر اس یاترا نے ایک الگ قسم کا آشا واد, کیونکہ ابھی سب سے زیادہ پچھلے 1-1.5 سال سے ایک طرح سے کرناٹک میں لگاتار ایسے نیریٹو بنائے گئے اور پورے دیش میں بھی اس کو پھیلایا گیا اور یہاں سے ڈرانے کی کوشش کی گئی, چاہے بزنس کرنے کو لے کر ہو. تو مائنورٹی بہت سچیت ہے, جو ڈیوائیڈ پالیسی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں بی جے پی کی طرف سے لگاتار کی جا رہی ہیں, تو اس کو لے کر کے وہ زیادہ سچیت ہے اور زیادہ وہ ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی سچیت ہے تو وہ لوگ سچیت ہیں, ان کو بالکل پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے.
دوستو آپ سن رہے ہیں کارکرم آج کی بات. اس کارکرم میں ہم ہر گروار کو چرچا کرتے ہیں بھارت کے مہتوپورن وشیوں پر. कार्यक्रम आज की बात। ये यात्रा अब तो और भी आगे बढ़ चुकी है, मगर 1000 किलोमीटर पूरे होने पर यात्रा के बारे में बड़ी चर्चा हुई, लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि यात्रा को जितनी कामयाबी मिली है उसकी कल्पना शायद कांग्रेस पार्टी के लोग भी पहले नहीं कर रहे थे। शुरू से भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और विश्लेषक और बड़े प्रतिष्ठित विचारक योगेंद्र यादव यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे होने पर अपने विचार साझा करते दिखाई दिए। वो इस यात्रा और इसके लक्ष्यों से बहुत अभिभूत नजर आए।
बहुत समय बाद इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्य धारा की पार्टी के प्लेटफॉर्म से अडानी अंबानी की बात हो रही, कॉरपोरेट क्रोनिज्म की बात हो रही, खुल्लम खुल्ला स्टेज से बोला जा रहा है ये आदमी जो दुनिया का दो नंबरी बन गया ये कैसे बना है, ये आपकी मेरी जेब के पैसे लूट के बना है। तो जन आंदोलनों को ये जरूर महसूस होता है कि हमारे मुद्दे वहां आ रहे हैं। कहीं बीड़ी के वर्कर आए, उन्होंने अपनी बात बताई, कहीं आत्महत्या से पीड़ित महिलाएं आई, उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, शिक्षा जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनकी बात आ रही है। तो जन आंदोलनों के मुद्दे हर दिन इसमें समाहित किए जा रहे हैं।
राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और पूरी तरह डिबेट को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में मीडिया पर यह आरोप लग रहा है कि उसने जनता के मुद्दे उठाने के बजाय सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा विवादित मुद्दे और सांप्रदायिक मसले उठाना शुरू कर दिया है और इसी पर खूब बहसें कर रहा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में जमीनी मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाकर सारे ही गलियारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं कुछ टीकाकार कहते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से अल्पसंख्यकों का भी भरोसा जागा है। महमूद आब्दी मुंबई के वरिष्ठ वकील हैं जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने एक डिबेट में भाग लेते हुए राहुल गांधी की यात्रा की बड़ी तारीफ की और कहा कि वे खुद भी इस यात्रा में जरूर शामिल होंगे क्योंकि ये देश को जोड़ने का यज्ञ है।
पिछले कई सालों से, करीब 5-7-8 साल से माइनॉरिटीज को यह इंप्रेशन हो रहा है कि सभी पार्टियां जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रही हैं और कोई खुलकर माइनॉरिटीज के साथ नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक मौका मिला है कि एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जिसमें सबको साथ लेकर, विकास को लेकर और जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको लेकर और सामाजिक चेतना को लेकर एक आंदोलन शुरू किया है राहुल गांधी ने। सामाजिक चेतना की बात हो रही है, राहुल गांधी इज नॉट इमर्जिंग एज अ पॉलिटिकल लीडर। जयप्रकाश जी जैसे लोहिया थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उनकी, लेकिन एक उसके साथ एक सामाजिक जुड़ाव था उनका, बड़े कंसर्न्स थे उनसे, मुल्क को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है और माइनॉरिटीज को खासतौर से कि कोई आदमी है जो सड़क पर निकला है, वरना पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं। और हमें जो महसूस हो रहा है, हम तो बॉम्बे में रहते हैं, ये गोदी मीडिया उनकी इस यात्रा को कवर करे या ना करे, लेकिन हलचल बहुत है और हमें यकीन है और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी इस टेम्पो को अपने बरकरार रखेंगे सामाजिक चेतना का। जब सामाजिक चेतना आएगी तो पॉलिटिकल स्पेस अपने आप साफ होगा और हम भी कोशिश करेंगे कि 10-5 किलोमीटर उनके साथ उनकी यात्रा में जरूर शरीक हो।
अनुराग चतुर्वेदी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वो अपनी याददाश्त के सहारे पुराने नेताओं की यात्राओं का आकलन करते हैं और राहुल गांधी की यात्रा की तुलना उन यात्राओं से करते हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के अंदाज में जेपी का अंदाज दिखाई देता है।
भारत जोड़ना एक हिंदुस्तान को जोड़ने की एक कवायद है और इसमें मैंने देखा कि राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है, जो एक आदमी भारत को देखने के लिए गांव-गांव जाता है, सड़कों पे चलता है, उसका जो आत्मविश्वास था वो तो मुझे जिस तरीके का आत्मविश्वास, जिस तरीके का देश को समझने की शक्ति चंद्रशेखर जी में आई थी, सुनील दत्त जी में आई थी, या बहुत अर्थों में अगर हम देखेंगे तो विनोबा भावे में आई थी, तो मैं अभी ये देख रहा हूँ कि भारत में जो व्यक्ति शंकराचार्य की तरह यात्राएं करता है, हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करता है, तो ये इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं है, देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। इसलिए राहुल गांधी का एक नया चेहरा, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा, जो कि अभी 1000 किलोमीटर में है, 2000 किलोमीटर में उनका और रूपांतरण हो सकता है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे, जैसे चंद्रशेखर जी भी जब मुंबई से आगे चले थे तो उसके बारे में हुआ था, लेकिन जो मीडिया का जो रूप है या जो गोदी मीडिया बना हुआ है उससे मुझे ज्यादा आशाएं नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम से मुझे जरूर लगता है कि वो राहुल गांधी से एक तारतम्य स्थापित कर पाए।
दिन भर चलने के बाद जब यात्रा रुकती है और यात्री विश्राम करते हैं तो उस समय भी बड़ा दिलचस्प माहौल होता है। राहुल गांधी अपने साथ मौजूद लोगों के बीच बड़े अपनायत के माहौल में बातचीत करते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल अद्भुत होता है।
ब्लिस्टर्स आते हैं, तमाम प्रकार की समस्या।
सबके ब्लिस्टर्स आए?
यस यस सर, यस सर।
हाँ
सर, मेरे नहीं आए।
मैं नहीं आया। तो सबसे अच्छा बेस्ट मोमेंट कौन सा था आप लोगों का?
सर मेरा तो तब था जब मुझे भारत यात्री बनाया। वन मंथ आई वाज वॉकिंग विदाउट द नेम।
अच्छा।
इट वाज अ वेरी टफ जर्नी, तो लेटर जब नाम आ गया देन आई वाज हैप्पी।
एक तो हमको कल्चर दिख रहा है, गांव भी दिख रहे हैं, छोटे कस्बे भी दिख रहे हैं, चाय की दुकान वालों में मिल रहा, उनसे हम लोग बातें भी कर ले रहे हैं। हम तो 14-14, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आके थकान का एहसास नहीं हो पा रहा।
नहीं, थकना है तो थका सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं।
नहीं सर, बहुत सही है,
लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं,
लगाम डाली हुई है।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बहुत ऊंचा है, ये केवल चुनाव जीतने और सीटें बढ़ाने की बात नहीं बल्कि पूरे समाज और संविधान को बचाने की कोशिश है। यात्रा में जाने माने युवा नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा के उद्देश्यों को केवल चुनावी हार जीत तक सीमित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी यही कहते हैं कि इस यात्रा का लक्ष्य बहुत बड़ा है, यात्रा भारत जोड़ने के लिए है। यात्रा में बार बार बड़े दिलचस्प नजारे दिखाई पड़ते हैं, इनमें स्थानीय आर्ट की झलकियां भी होती हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने और इसी तरह बहुत से संगठनों ने इस यात्रा को बड़े उद्देश्य के तहत शुरू किया। जहां कुछ गलियारे इस यात्रा को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इस यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। दरअसल वर्तमान भाजपा सरकार के बारे में ये आरोप है कि वो पूरे देश और पूरे समाज को एक अलग दिशा में ले जाना चाहती है, जो भारत के संविधान की दिशा और आत्मा से मेल नहीं खाती। भारतीय जनता पार्टी और साथी आरएसएस पर ये आरोप दुनिया के दूसरे देशों में भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही गहरी चिंता भी जताई जा रही है कि मोदी सरकार अपनी डगर पर आगे बढ़ रही है और भारत के उन संस्थानों को कमजोर कर रही है जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं कि मजबूत बने रहें। इन हालात में राहुल गांधी की ये यात्रा किस हद तक कामयाब होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम सुना आज की बात। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम, सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में भी हम एक और सफल ईरानी महिला से आपका परिचय कराएंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
तीसरा महिला एवं विज्ञान महोत्सव 6 दिसंबर 2019 को तेहरान के शहीद बहिश्ती विश्वविद्यालय में वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप में आयोजित हुआ। इस समारोह में पहली बार विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों के सहयोग से डॉक्टर परवाने फरजाना के नाम पर अवार्ड अकादमिक हस्तियों में से एक को दिया गया। महिला एवं विज्ञान महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य ईरानी राष्ट्र की सफल महिलाओं को सम्मानित करना है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के संकाय की सदस्य डॉक्टर परवाने फरजाना के मूल्यवान प्रयासों और उनकी महान भूमिका को देश के विश्वविद्यालयों ने अपना रोल मॉडल बनाया है। ईरान के आनुवंशिक और जैविक संसाधनों ने डॉक्टर परवाने फरजाना नामक एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत करके जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र को भी सम्मान दिया। डॉक्टर परवाने फरजाना एक अथक वैज्ञानिक थी कि जिन्होंने 1400 से अधिक सेल लाइनों के साथ ईरान के राष्ट्रीय आनुवंशिक और जैविक संसाधन केंद्र के पशु और मानव कोशिका बैंक की स्थापना की थी। वर्तमान में इस बैंक ने वैज्ञानिक, शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षमताओं का एक सेट प्रदान किया है।
ईरान की महान इस्लामी क्रांति की सफलता के 40वें साल डॉक्टर परवाने फरजाना के नेतृत्व में ईरान के आनुवंशिक और जैविक संसाधनों के राष्ट्रीय केंद्र के मानव और पशु सेल बैंक के शोधकर्ताओं ने दो प्रकार के अमर गैरेलोसा कोशिकाओं का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की। इस कामयाबी को हासिल करने के बाद डॉक्टर फरजाना से खुशी के साथ ऐलान किया था कि आज हमारा देश ईरान बांझपन अनुसंधान और उपचार के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है। डॉक्टर परवाने फरजाना के नाम से शुरू हुआ पुरस्कार इस साल ईरान के वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं में से एक डॉक्टर इलाहे इलाही को दिया गया। डॉक्टर इलाहे इलाही ऐसी ईरानी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के दौरान उपचार से लेकर निदान और वैक्सीन उत्पादन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर फरजाना और डॉक्टर इलाही जैसी सफल ईरानी महिलाओं की विज्ञान के क्षेत्र में सक्रियता ये दर्शाती है कि ईरानी महिलाएं पूरी तरह इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका को दुनिया के सामने दर्शा रही हैं।
डॉक्टर इलाहे इलाही ईरान की एक ऐसी सफल महिला है कि जिन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। डॉक्टर इलाही ने पहले राष्ट्रीय उत्सव एवं स्टेम सेल विज्ञान प्रौद्योगिकियों और पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वेटरन्स अवार्ड भी जीता है। उन्होंने 1970 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और मिशिगन विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर उन्होंने कैलिफोर्निया में UCSF विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के विषय में ही अध्ययन किया। इस समय डॉक्टर इलाही इलाहे अब वह तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख प्रोफेसरों में से एक है। उनसे पढ़ने वाले छात्र उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में डॉक्टर इलाही से पढ़े हुए छात्र बेहतरीन चिकित्सक के रूप में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर इलाही जैसी सफल ईरानी महिलाएं जो ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद से आज तक विभिन्न भूमिकाएं अदा कर रही हैं। इस्लामी क्रांति के समर्थन में कई अवसरों पर महिलाओं का आगे आना उदाहरणीय है।
डॉक्टर इलाहे इलाही ईरानी महिलाओं के बारे में कहती हैं कि ईरान में महिलाओं के योगदान के बारे में इस्लामी विचारधाराओं में महिलाएं कभी भी आम लोगों और सामाजिक कार्यों से अलग थलग नहीं रही हैं। इस्लामी व्यवस्था के अनुसार समाज के विकास की जिम्मेदारी पुरुषों के साथ ही महिलाओं के कंधों पर भी है। इस विचारधारा के उत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक आज के समाज की महिलाओं और लड़कियों की पहचान और उनमें आत्मविश्वास की भावना का पुनरुद्वार है, जिसका फल हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं। डॉक्टर इलाही कहती हैं कि मेरा मानना है कि परिवार एक ऐसी इकाई है जहां से व्यक्तिगत और बाद में सामाजिक विकास की शुरुआत होती है, और इस प्रक्रिया में परिवार की धुरी के रूप में महिला की भूमिका ध्यान योग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाएं परिवार में अपनी प्रभावशाली भूमिका अदा करने के दौरान अपनी अन्य सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भुला बैठें। इन दोनों भूमिकाओं के बीच एक समान व कलात्मक संतुलन बनाने और सटीक परिणाम तक पहुंचने की हर तरह बुद्धिमान महिला से अपेक्षा की जा सकती है।
श्रीमती डॉक्टर इलाही पूर्व विश्वविद्यालय जीव विज्ञान सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान सहित कई किताबें जैसे मॉलिक्यूलर एनालिसिस एंड जीनोम डिस्कवरी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का अनुवाद कर चुकी हैं। उन्होंने जिन संरचना और प्रतिलेखन जीव विज्ञान पर किताबें और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रकाशनों में कई लेख प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर इलाही ने अपने माता पिता के साथ रहकर अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है। वह 1958 में 9 वर्ष की आयु में अमेरिका गईं और 1980 में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान लौट आईं। डॉक्टर इलाही इस बारे में कहती हैं कि मैं कई वर्षों तक देश से दूर रही और मुझे खुशी है कि मैं वापस आ गई। वे कहती हैं कि भले ही मैं अमेरिका के अच्छे स्कूलों में पढ़ती थी और मुझे कोई समस्या भी नहीं थी और न ही मुझे किसी चीज की कोई कमी थी, बस एक चीज का मुझे एहसास होता था, जैसे अपनों से दूर हूँ, अपनों के साथ नहीं हूँ और एक विदेशी होने की भावना ने मुझे परेशान कर रखा था। कभी कभी मुझे वहां रहने के लिए लुभाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं ईरान लौटना चाहती थी और अंत में मैं अपने पति के साथ लौट आई। मुझे लगता है कि यह मेरा है, जैसे माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे उनके हैं। मैंने 40 साल तक अकादमिक माहौल में काम किया।
अपनी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर इलाही कहती हैं कि मेरे द्वारा अपने कामों का उल्लेख करना या उसे बताना इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहती हूँ, बल्कि मैं सभी को, खासकर महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि ईरान में रहकर और अच्छी तरह से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। मेरा कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के रोगों में रहा है, जिसमें तंत्रिका अंग के रूप में आँख के रोग भी शामिल हैं, लेकिन मुझे अनुवंशिकी से प्यार हो गया और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की शुरुआत से मेरा लक्ष्य इन संकेतकों में से कुछ के लिए जिम्मेदार जीन को खोजना था और सौभाग्य से मुझे ये अवसर मिला और मैंने कई बीमारियों के जीन की पहचान की और उनके नतीजों को दुनिया के सामने लाई। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पार्किंसंस रोग जीन है, जिसे फिजोक्स 7 कहा जाता है। साथ ही मैंने दिल के दौरे से संबंधित जीन की पहचान की और ईरान में ALS नामक एक अन्य महत्वपूर्ण बीमारी के संबंध में काम किया। डॉक्टर इलाही बताती हैं कि इस रोग से संबंधित अनुवंशिक प्रकार के बारे में अधिकांश जानकारी देश में हमारे शोध के परिणामों से प्राप्त हुई है।
डॉक्टर इलाही इस विज्ञान के व्यवहारिक पहलुओं को बढ़ाने के बारे में कहती हैं कि हमें जीन थेरेपी और स्टेम सेल के साथ उपचार की समस्याओं की ओर बढ़ना है, और जब से हम शुरुआत में इस विज्ञान की ओर बढ़े हैं, मैं इस विज्ञान और देश में इसकी प्रगति के बारे में आशावादी हूँ। डॉक्टर इलाही कहती हैं कि जब मैं अपने आप का उन साथियों से मुकाबला करती हूँ कि जो अमेरिका से ईरान लौटकर वापस नहीं आए, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि वे सब मुझसे ज्यादा संतुष्ट होंगे। जितना मैं ईरान में रहकर काम कर पा रही हूँ और अपने देश के लोगों की सेवा कर पा रही हूँ, उतना मेरे साथी नहीं कर पा रहे। वे कहती हैं कि मैं पूरे दावे से यह कह सकती हूँ कि विदेश में रहने वाले मेरे साथी अगर ईरान लौट आए तो उन्हें वहां रहने से ज्यादा यहाँ संतुष्टि भी मिलेगी और बेहतर जीवन का लाभ भी उठाएंगे।
डॉक्टर इलाही कहती हैं कि यदि यहाँ हमें किसी चीज की समस्या है या किसी चीज की कमी महसूस होती है तो हमने उसे पाने के बारे में सीखा है। हमारे अंदर इतनी प्रतिभा है कि हम अपने अनुभवों और अपनी प्रतिभा से उसे हासिल कर सकें। डॉक्टर इलाही कहती हैं कि आज मुझे गर्व है अपने ऊपर और अपने उन सभी साथियों पर जो देश में रहकर देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, साथ ही देश के जिम्मेदारों का कि जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र वातावरण में शोध करने का अवसर दिया, और साथ ही पूरा सम्मान। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में हम डॉक्टर इलाही समेत उन सभी सफल महिलाओं का सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं। अब आप हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने कार्यक्रम सुना सफल महिलाएं, जिसे पेश किया रविश जैदी और स्वाति ने। कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर हमको बताइएगा। हमारी वेबसाइट पर आकर हमारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं parstoday.com/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़।